और अब आगे बढ़ते हुए हम सभी के मध्य आज इस बहुत सुंदर दिवस पर, आज इस मधुबन के प्रांगण में हम सभी के मध्य उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय सरोज दीदी जी। दीदी जी का हम सभी मिलकर के बहुत बहुत तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और समर्पित रूप से समाज के मानव कल्याण के लिए ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप वसंत कुंज, द्वारिका और नई दिल्ली के संबंधित सेवा केंद्रों को सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आप स्पार्क विंग आरईआरएफ दिल्ली एनसीआर के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के परमानेंट मैनेजमेंट फैकल्टी भी हैं। और एक बहुत ही खुशी की बात है कि दीदी जी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच से एक्सीलेंट सर्विस अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो इसके लिए भी हम सभी दीदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने अनेक कोर्सेज जैसे SML, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड मेडिटेशन जैसे इत्यादि कोर्सेज द्वारा अनेक यूनिवर्सिटीज, मेडिकल एसोसिएशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट सेक्टर्स आदि में भाई बहनों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। आपकी सेवाओं का सफर केवल भारत ही नहीं पर विदेशों तक भी रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि आपने जम्मू कश्मीर में भी 10 साल दीदी जी ने ईश्वरीय सेवाएं देकर वहां की आत्माओं का भी कल्याण किया है। और दीदी जी के व्यक्तित्व के बारे में कि आप बहुत ही कर्मठ रहे हैं अपनी सेवाओं में, आपने बाबा की दिनचर्या को बहुत एक्यूरेटली अपने लाइफ में फॉलो किया है। आप ईमानदारी, संतुष्टता, सादगी, सरलता, गंभीरता आदि गुणों से भरपूर हैं। तो ऐसी दीदी जी का आज हम बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जैसे आपने कल भी सुना होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट नंबर 4 है आदि स्वरूप, तो दीदी जी आज हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन देंगे इस प्रोजेक्ट, इस विषय पर, और इस पर हमें प्रकाश भी देंगे। तो दीदी जी के लिए कुछ पंक्तियां हमने लिखी है दीदी जी की सेवाओं को देखते हुए। ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस मंच पर व्यक्तित्व महान, करते हैं आदरपूर्वक उनका हम प्रणाम। तो अभी हम सभी सुनेंगे आदरणीय दीदी जी से। ओम शांति।
ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको जैसे बहन ने बताया कि जो एक विशेष ऐसे चार प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, सभी भाई बहने उसे ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन। उसमें से एक प्रोजेक्ट है आदि स्वरूप। कल आप सबको मालूम हुआ सुदर्शन चक्रधारी सुविश्व राज्य अधिकारी, उसका एक शुरू में हमने दो स्वरूपों का अभ्यास किया था, फरिश्ता स्वरूप और अनादि स्वरूप। इस वर्ष हमने लिया है आदि स्वरूप। तो मैं इसके बारे में सोच रही थी, विषय तो काफी गहन है लेकिन थोड़ी आउटलाइंस हम सब सुनेंगे आज, कैसे हमें उसे अपने जीवन में लाना है। से बाबा हमेशा कहता है कि शुरू से हमारा एक स्लोगन रहा कि लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। क्योंकि हम लोग प्रवृत्ति वाले सारे बाबा के घर में आते हैं, फैमिली पाथ, ये पाथ ऑफ आइसोलेशन नहीं है, संन्यास मार्ग नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आदि स्वरूप है वो है नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करना, जिनकी हम सभी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो सर्वगुण संपन्न का मतलब है हर तरह के दिव्य गुणों में संपन्न थे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जो भी सतयुगी देवी देवताओं की आत्माएं थी वो सर्वगुणों में संपन्न थी। तो आपको दिखाया जाएगा बाद में 36 दिव्य गुण जो हमारे विश्वविद्यालय ने डिफाइन किए हैं, उन 36 गुणों को हमने लिया है। लेकिन जो सर्वगुण संपन्न का मतलब है कि किसी भी गुण की उनके अंदर कमी नहीं थी, लेकिन जो भी भविष्य हमारा स्वरूप है उसका पुरुषार्थ वर्तमान में हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी के संस्कार हम भविष्य में लेकर जाएंगे। तो अभी से हमें सर्वगुण संपन्न कैसे बनना है उसके लिए जो हमारा चिंतन चला वो यह कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे में दिव्य गुण आए, दिव्यता आए, शालीनता आए, सौम्यता आए, मधुरता आए, धैर्यता हो, नम्रता हो, हर्षित मुखता हो। सब तरह के गुण हम सभी चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई उससे भी अधिक, कोई 50 से, कोई शुरू से ज्ञान में है, कोई नए भी हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि हम सभी चाहते हुए भी दिव्य गुणधारी बन नहीं पाते हैं। पहले तो हमें यह देखना है कि गुणवान और दिव्य गुणवान में क्या अंतर है। बहुत सारी दुनिया में लोगों में स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, गुण हैं, लेकिन एक है गुण और एक है दिव्य गुण। दिव्य गुण का मतलब है जिसमें डिविनिटी हो, जिसमें आत्मीयता हो, रूहानियत हो। आप देखेंगे दुनिया में लोगों को अपने गुण का अभिमान भी आ जाता है, पर जब ये दिव्य गुण बन जाता है तो दिव्य गुण में न तो दिव्य गुणधारी को स्वयं अभिमान आएगा, न उनके किसी कर्म से दूसरे को ईर्ष्या होगी। कई बार गुणवान व्यक्ति दुनिया में बहुत है, दूसरे उनके जो इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको देख के अच्छा नहीं लगता उनको। पर जितने जितने हम दिव्य गुणधारी बनते जाएंगे, हर एक व्यक्ति हमको अच्छा लगेगा और हर एक को हम पसंद आएंगे, क्योंकि हमारे गुण में पवित्रता है और दिव्यता है, अभिमान नहीं है। कहीं भी अपने गुण का थोड़ा सा अभिमान आ गया तो वो दिव्य गुण नहीं रहा। गुण तो है लेकिन दिव्य गुण नहीं है। तो हम सभी दिव्य गुणधारी बनना चाहते हैं, लेकिन कौन सी बातें हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बनती हैं? और अगर हम ये देखें कि इन सभी दिव्य गुणों में से कौन से गुण को हम प्राथमिकता दें जो सारे गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाएं, वो भी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर एक संकल्प है कर्मों के विधान का, कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका हमको फल मिलेगा, चाहे मैं अच्छा कर्म करूं या मेरा निकृष्ट कर्म है, कर्म अपने आप में एक फल है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता है। तो कई बार क्या होता है कि बाबा मुरली में हमको कहता है, मीठे बच्चे अपकारी पर भी उपकार करो, कोई कितना भी तुमसे मिसबिहेव करे, अमर्यादित व्यवहार करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें गाली दे, रावण जितना भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा उसके प्रति प्यार होना चाहिए, तुम्हारी भावनाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए। हम मुरली सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, आनंद आता है, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। फिर हम कहते हैं, आज के बाद कुछ भी हो जाए, हम तो बस बाबा जो कहता है ना वही करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम व्यवहारिक क्षेत्र में यहां से बाहर जाते हैं, थोड़ा सा हमारे सामने एडवर्स सिचुएशन आती है, तो उस समय क्या होता है, हम अपना दिव्य गुण छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, भाई क्या हुआ? फिर कहते हैं, सारा ज्ञान मेरे लिए है क्या? अज्ञानी की बात तो समझ में आती है, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये तो बहुत पुराना ज्ञान में है, 30-40 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हमको क्या गाइड करेंगे ये? ऐसे कई बार होता है, भाई सहन की भी कोई लिमिट होती है, इतना तो नहीं हो सकता। और कभी कभी क्या है, अपने में भी संशय आने लगता है कि मंजिल बड़ी भारी है, नॉट ईजी, इतना सरल नहीं है। बाबा तो कहता है लेकिन बना कौन है, दिखा दो मुझे कोई आज दिन तक बना हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आता ये ईश्वरीय ज्ञान है या नहीं है, ये ऐसा करते हैं, ये सारे संकल्प उठते हैं। अब ये संकल्प उठते ही हमारा जो पुरुषार्थ है वो बैक रिवर्स गियर में चला जाता है, और रिवर्स गियर में जाने से धीरे 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 संशय का कीड़ा अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि कई बार ऐसा होता है, बाबा कहते हैं पुराने पुराने बच्चे भी सुनंती कथंती और भागंती हो गए। तो दिव्य गुण धारण करके सर्वगुण संपन्न बनना, उसके लिए क्या चाहिए? मुझे ये लगता है कि कोई करे या ना करे, मुझे करना है, जो करेगा सो पाएगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा है और बुरे कर्म का फल बुरा है। अगर मैं भी बुरा करती हूं उसमें मेरे को भी उसका फल मिलेगा, और दूसरा कर रहा है उसके लिए मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा को ज्ञान है, मैं निश्चिंत होके इस सिद्धांत पर चलूं कि मुझे श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है और ये मेरी कमाई का समय है। अगर ये समय मैंने व्यर्थ गवा दिया, बाद में पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए किसी भी हालत में मुझे इस सिद्धांत को याद रखना है कि जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म हैज इट्स ओन रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब क्या हुआ? आपके लिए इनाम है, बहुत बड़ा तोहफा है, आपके ही श्रेष्ठ कर्म। मान लीजिए किसी ने कोई अच्छा कर्म किया, किसी व्यक्ति को सड़क पार करा दी, असमर्थ आदमी को थोड़ा हेल्प कर दी, बहुत प्यासा व्यक्ति है उसको आपने पानी दे दिया, किसी के सिर पे दर्द है आपने थोड़ा सा उसे सहला दिया, तो आपको अंदर सुख मिलता है, शांति रिवार्ड में मिलती है। वो अलग बात है कि वो आपको थैंक्स दे या ना दे, पर उस समय का फल आपको ये दिखा रहा है कि आपने अच्छा कर्म किया है। तो मुझे तो हमेशा कई बार, मैं क्लास में बोलती हूँ कि मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ तो मैं किसी के साथ अच्छा नहीं करती, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ, मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है, मैं अपनी शांति खंडित क्यों करूं? हर कर्म का फल है। जब ये बुद्धि में याद रहेगा तो आप जितने भी दिव्य गुण हैं उसको धारण करने में पीछे नहीं हटेंगे। किसी की आप कॉपी नहीं करेंगे, नकल नहीं करेंगे, मुझे करना है, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें चाहिए दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। इतनी ज्यादा दृढ़ता हो, कुछ भी हो जाए, जिसे बाबा कहते हैं धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। मैं जब कश्मीर में थी, अनंतनाग में, तो शुरू शुरू में हमको क्या होता था कि नए नए आए थे, नशा बहुत रहता था, बहुत नशा। एक ही बात का, भगवान धरती पर आ चुका है, भगवान धरती पर आ चुका है, वो जो भी आदेश करेगा हम पालन करेंगे। तो हमें अनंतनाग भेजा गया, वहां पर बर्फ ही बर्फ रहती है, तो कश्मीरी पंडित जो होते ना वो इतनी जल्दी ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करते, लॉजिक और रीजनिंग उनको बहुत ज्यादा चाहिए। भोजन भी उनका, आप जानते हैं कि वहां बर्फ पड़ने के कारण से वो लोग नॉनवेज भी लेते हैं कश्मीरी लोग। तो वो लोग हमको ये कहते थे कि मुझे वो जो भाई था वो बहन या दीदी नहीं कहता था, वो भगवती कहता था, भगवती आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ बैठेंगे, ऐसे करके संबोधित करता था। लेकिन उसका जो बेटा था वो ज्ञान में नहीं चलता था। तो हमने क्लास के भाई बहनों से कहा, बहुत थोड़े भाई थे, हमने कहा कि आज ना हम नाइट भर योग करेंगे, रात भर योग करेंगे। तो सभी भाई उमंग उत्साह में आ गए। तो उसने एकदम आए, क्योंकि उनका फादर ज्ञान में था, उसने कहा होगा कि आज हमारी भगवती ने बोला है कि हम रात भर योग करेंगे। कहा आप रात भर योग करेंगे, ये साइकेट्रिक पेशेंट हो जाएंगे, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, जिंदगी भर इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और आज दिन तक पूरी रात साइलेंस में बैठना ये आसान काम नहीं है, आप ऐसा पाठ इनको नहीं पढ़ाएं, मैं तो अपने फादर को बिल्कुल नहीं भेजूंगा। तो जो उसको बात करनी थी उन्होंने बोला, लेकिन मेरे को भी अंदर से पता नहीं क्यों इनके प्रति बहुत अच्छा शुभ भावना रही। तो हमने कहा ठीक है, हमने स्वेच्छा से जो आना चाहे वो आए, किसी को कंपल्शन नहीं है। तो हम लोग योग किया हमने, वो ना बेचारा बोल तो बैठा, अब क्या हुआ, उसने रात को आधी रात में उठकर वो देखने आया कि योग कर रहे हैं, और देखा तो लाल बत्ती जल रही थी, सब साइलेंस में बैठे थे, योग कर रहे थे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और नेक्स्ट डे क्या था कि हम लोग यंग एज में थे, उस समय थकान का तो मतलब ही नहीं होता था, तो उस समय उस कमरे में व्हाइट वॉश अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा आज ना इसको थोड़ा व्हाइट वॉश कर लेते हैं। एक छोटा सा कमरा हमारे पास था शुरू में। फिर वो भाई आया, उसने कहा कि आपकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, रात भर आपने योग लगाया और सवेरे उठ के आप थके नहीं हो। और फिर उसने ना हमारे आगे दंडवत प्रणाम किया, कहा आपका शिव बाबा किसी भी रंग का हो लेकिन है जरूर, मैं आप सबके आगे नमन करता हूं, आप कितनी पवित्र देवियां हैं। और बर्फ में लोग सेक्टेट नीचे चला जाता है, और आप दिल्ली जैसे शहर से बर्फ में गलने के लिए आए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, परंतु एहसास होता है कि कोई ताकत है। और फिर रोज क्या करते थे, पहले अपने फादर को बोला कि आप इनको यहां क्यों लेकर आए, बाद में अपने फादर को बोलता है कि जब तक मैं जिंदा हूं ये आश्रम यहीं रहेगा, हम इसको शिफ्ट होने नहीं देंगे, यहीं रहेगा ये। और तीसरी बात उसने क्या कही, वो एडवोकेट था वहां का, एमिनेंट एडवोकेट, मेरे को आज भी याद है, उसको भट्ट साहब कहते थे। तो वो रोज हमारे जो दरवाजा है उसको स्पर्श करता था, ऐसे करता था, फिर जेब में हाथ डाल के जाता था कि मेरा जो घर भरने वाला, दुकान मतलब काम बढ़ाने वाला, वो परमात्मा है। उसकी बहुत श्रद्धा आस्था बढ़ गई। तो हम ये सोचते हैं कि जो दृढ़ता है, बाहर वाले कुछ भी कह दें, मुझे आता था भगवान धरती पर आ चुका है, ये तो कहेंगे क्या बड़ी बात है, हमने तो अपना संदेश सबको देना ही है। ये दृढ़ता थी कुछ भी हो जाए, जो डिसिप्लिन है, जो बाबा ने बताया, वो हम करेंगे ही करेंगे, राइट। और दूसरा, कई बार बीके फैमिली में भी हम देखते हैं कि कोई पुरुषार्थी थोड़े कमजोर होते हैं, क्लास में नहीं आना चाहते, तो कहते हैं आज क्लास में जाने की क्या जरूरत है आपको, रोज क्लास में थोड़ी करना होता है, ऑनलाइन सुन लो ना घर बैठे, वही मुरली तो दीदी वहां सुनाएगी, वही यहां सुनाएगी, रोज क्यों जाना, आज वो इम्पोर्टेंट काम है वही वो कर लेते हैं। और सेवा भी ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के नहीं करनी चाहिए, ठीक है अपना ठीक ठीक रहना चाहिए, हम गृहस्थी लोग हैं, हमारे बस का नहीं है, वो खुद उमंग उत्साह वाला नहीं है तो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को भी कोशिश करेगा नीचे लाए। लेकिन जिसमें दृढ़ता है वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आते, कुछ भी हो जाए वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, और उमंग उत्साह से दूसरे को भी अपने जैसा बना लेते हैं। तो सबसे पहली क्या चाहिए, दृढ़ता। जहां दृढ़ता है वहां आप धीरे धीरे बढ़ते 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 सद्गुणी बनते चले जाएंगे। और जो हमारा एम है, हमें सर्वगुणों में आगे संपन्न बनना है, वो पूरा होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा गुण है वो है, वैसे तो 36 दिव्य गुण आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे जो बड़ा गुण है वो है संतुष्टता। कहते संतोष जिसको कहते हैं कि Contented beggar is a king, but greedy king is a beggar. अगर कोई व्यक्ति चाहिए 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 कहता है तो राजा होके भी वो beggar है, और अगर beggar है एक वैसे beggar है परंतु वो कंटेंटेड है तो एक अपने आप में बहुत बड़ा बादशाह है। इसलिए संतुष्टता सर्व गुणों का राजा है। तो अगर हम ये गुण धारण कर लेते हैं अपने जीवन में, सिर्फ एक गुण, क्योंकि एक गुण धारण करने से अनेक गुण आप में आ जाएंगे। जैसे एक अवगुण अगर मेरे अंदर आ गया तो बहुत सारे अवगुण उसके साथ चले आएंगे, उनकी आपस में बहुत दोस्ती है, मित्रता है। जैसे दृढ़ता में अंगद का मिसाल देते हैं कि उसने रावण के कोर्ट में अपना पांव जमाया तो कोई उसके पांव को हिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। जितने भी यादगार है वो हम बच्चों की है, इतनी दृढ़ता हो। अंगद का मतलब है जो अपना सारे ऑर्गन अंग अंग शिव बाबा को दे दे, यानी बाबा कहता है ये शरीर बाबा का है, मेरा नहीं है। तो अंगद का पांव वो कैसे हिला सकता था जब उसका अपना शरीर था नहीं? तो भगवान का पांव को हिला सकता है क्या? नहीं ला सकता ना। इसलिए उसका दृढ़ निश्चय था कि कोई ताकत मेरा निश्चय हिला नहीं सकती। तो हम भी बाबा कहते हैं अपना सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पित कर दे, और अगर हम समर्पित की हुई चीज में मैंपन या मेरापन लाते हैं, ये अमानत में खयानत है। ये हमारी बुद्धि में रहे कि सब कुछ बाबा का है। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं बहुत कि जब बाबा ने अपना तन मन धन जन सब कुछ समर्पित कर दिया, और बीच में बाबा का जो लौकिक बेटा नारायण था उनका देखा बाबा ने, तो बाबा ने उनको कहा कि अभी आपका पुरानी दुनिया में हिसाब किताब लगता है, आप जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि उस समय दीदी मनमोहिनी थी, उनके मन में आया कि आखिर तो लौकिक में ये बाबा का बच्चा है, इसका अधिकार है इनके वर्षे पर। अब इतने साल ये साथ में रहा, अब ये कैसे जा करके सेटल करेगा अपने आप को? लेकिन बाबा ने क्या कहा कि मेरा कुछ रहा नहीं है, मैंने अपना सब कुछ जो भी कखपन था वो बाबा को समर्पित कर दिया है। अब मैं बाबा के खजाने से कुछ भी नहीं ले सकता बाबा की परमिशन के बिना। इसलिए बाबा जाने, बाबा का काम जाने, ये भी बाबा का बच्चा है। एकदम से बाबा ने नष्ट मोहा बनकर के डिसीजन लिया। बाद में देखो दीदी ने अपने परिवार में मैसेज किया कि बाबा का बेटा यज्ञ से बाहर आ रहे हैं, आप इनको अपना बेटा समझ के सेटल करें। तो बहुत अच्छी तरह वो सेटल भी हुए, बिग बिजनेसमैन भी बने। लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया था तो देखो बाबा ने उनकी मदद की। तो किसी भी तरह का दिव्य गुण धारण करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता जरूरी है। कुछ भी हो जाए हमें अपने इरादे से पीछे नहीं हटना है। तीसरी हम जो बात बता रहे थे संतुष्टता, संतोष जो है सबसे बड़ा खजाना है और सर्व गुणों का राजा है। तो एक हम अपने अंदर ये सबसे बड़ा गुण धारण करें, हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। अभी तक देखो कई बार हम बाबा की क्लास में मुरली सुनते सुनते संकल्प लेते हैं, बाबा मैं सहनशीलता का गुण धारण करूंगी। परंतु सहनशीलता का गुण आएगा कैसे? उसका आधार भी संतुष्टता है। हम ये नहीं सोचते कि बाहर जा करके कौन कौन से चैलेंजेस मुझे आ सकती हैं, वो नहीं सोचते हैं। दृढ़ संकल्प तो करते हैं लेकिन यहां से बाहर जाने के बाद क्या क्या परीक्षा आ सकती है उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते। और यही कारण है कि कोई व्यक्ति हमसे ऐसा व्यवहार करता है तो हमारी मानसिक स्थिति इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे मन में क्वेश्चन उठने लगते हैं, ये क्यों, ये क्यों, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, हर समय ये मेरे ही पीछे लगा रहता है, ऐसा क्यों करता है ये, इसका मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने देखा इंटेंशनली ये मेरे पीछे पड़ता है या पड़ती है, जहां मैं जाऊंगा वहां मुझे ये फॉलो करेंगे, क्या मतलब है इनका। हम बड़ों के सामने भी शिकायत करते हैं उस समय हमारे मन में क्यों 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 क्वेश्चन उठता है, हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे याद रहे, हर आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, ये आखिरी जन्म है, इस आत्मा का मेरे साथ कार्मिक अकाउंट है, ये सेटल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, सेटल हो जाएगा। अगर मैं नहीं करूंगी तो धर्मराज की अदालत में मुझे फिर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, अच्छा ही है कि यहां मैं खुशी खुशी सेटल कर लूं। तो ऐसा सोचने से सहनशीलता आएगी। हम सोचे कि सहनशीलता अलग गुण है, जब मैं संतोष अपने आप में धारण कर लेती हूं तो मेरे को सहन करना कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप में हर्षित मुक्ता, शीतलता, शांति, दिव्यता ऑटोमेटिक आने लगता है। तो हम क्या धारण करें अपने में? सहनशीलता। कई बार हम ये कहते हैं कि नहीं, हम ये कैसे मान लें कि इसका मेरे साथ कार्मिक अकाउंट है, ये मेरे साथ ही तो ऐसा थोड़ी करता है, सबके साथ करता है, इसका तो व्यवहार ठीक नहीं है, आदत इसकी ठीक नहीं है, क्या इसको प्रमोट करते रहना ठीक बात है? आफ्टरऑल हमें इसको समझाने के लिए तो कुछ करना चाहिए ना, तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे चलो उसका हिसाब वो बना रहा है, जो बना रहा है मेरी उसके प्रति भी रहम की भावना हो, मेरा भाई है, अबोध बालक है, ये अनजान है, शायद ये कर्मों का विधान भूल गया है, ये शब्दों से नहीं समझ रहा, मैं अच्छी मन की अच्छी फीलिंग्स के द्वारा शुभ भावना शुभ कामना से इस आत्मा को राहत दूंगी, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं करना है। तो अंदर में अगर ये सोच ले हम, चलो उसका हिसाब किताब, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी हमारे साथ कोई इस तरीके से करता है, अभी तक हम सब में रिएक्शन आता है, और वो ना आए उसका सरल तरीका ये है कि हम सदा याद रखें कि हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। एक ने मेरे से पूछा कि कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, ये पता कैसे चले मेरा कार्मिक अकाउंट है? हम ये सोचते जो मेरे को बिना किसी वजह के किसी ने कुछ कमेंट्स दिया, मेरे लिए अच्छा दिया या बुरा दिया, मैं अच्छा करके आई हूं तो मेरे को अच्छा मिला, मैं बुरा करके आई हूं तो मुझे बुरा मिला, जो मेरे पास ऑटोमेटिक आया है वो मेरे कर्म का रिजल्ट है, पूर्व कर्म का। लेकिन उसके बाद मैंने कैसे रिएक्ट किया वो मैं आगे का बना रही हूं, आगे का भी हम बना रहे हैं। इसलिए दादी जानकी हमेशा कहती थी कि पिछले अकाउंट को सेटल करो और आगे के लिए किसी से कोई अकाउंट नहीं बनाओ, इस बात का ध्यान रखो। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम श्रेष्ठ कर्म की तरफ अग्रसर होंगे, अच्छे अच्छे दिव्य गुण धारण करेंगे। और जो चौथी बात है वो हमारे अंदर आना चाहिए, उमंग उत्साह, उसकी कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उमंग उत्साह ऐसी शक्ति है जिसको हम कहते हैं एंथुसियाज्म एंड करेज, यानी एक साहस हो और अंदर से उत्साह हो, ये दोनों चीजें चाहिए, अदरवाइज इसके बिना तो ऐसा लगता है जैसे आप निष्प्राण हो गए, आपके अंदर कोई जान नहीं है, मुर्दे जैसे हो गए जिनमें उमंग उत्साह नहीं होता, वो हमेशा ही निराशा वाली बात करेंगे। आप उनको प्यार से समझाएं, कहेंगे आप मुझे ज्यादा नहीं समझाया करो, मुझे सारा ज्ञान है, मेरे को ज्यादा समझाओ नहीं, मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे यही रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ना मेरा भाग्य क्या है, जब मैंने किसी अच्छे काम में पांव रखा मुझे हमेशा नुकसान ही हुआ, जब मैंने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया उसने मेरे साथ बदला लिया, मुझे सब समझ है, इसलिए मैं अपने आप जो होगा होना होगा हो जाएगा, लेकिन मुझे आप ज्यादा नहीं कहा करें। तो इसका मतलब क्या है, उसका उमंग उत्साह क्या हो गया है? कम हो गया है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे उमंग उत्साह में रहो, अगर आपका उमंग 14 आने है आप दूसरे का 16 आने करो, तो आपका भी क्या हो जाएगा? 16 आने हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सेवा है, किसी मूर्छित को सुरजीत करना, किसी मूर्छित को सुरजीत करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे तो हमारे लिए पहाड़ भी राई बन जाएगा। उमंग उत्साह क्या होता है? किसी भी अच्छे कार्य के लिए हम हमेशा निराशा वाली बात करें, इसको उमंग उत्साह नहीं कहते। लेकिन अगर मुझे काम नहीं भी आता है तो भी मैं कहती हूँ कि नहीं, ठीक है, मैं सीखूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैंने कभी नहीं किया है लेकिन आप मुझे गाइड करें, मैं करके दिखाऊंगी, है ना। जैसे किसी को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर नहीं चढ़ने का संकल्प आ गया तो उसके मन में आता है कि मैं करूंगा ट्राई। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं विजेता, वो भी तो इस धरती पर पैदा हुए हैं, वो भी तो हमारे जैसे ही हैं, वो कोई आसमान से थोड़े उतरे हैं, मैं करके ही दिखाऊंगा। तो देखो, कोई दूसरा उससे डिस्करेज करे कि तुम दुबले पतले हो, तुम में जान है नहीं, दो कदम में तो तुम चल नहीं पाते और तुमने इतनी बड़ी सोच रखी है, और उन पर व्यंग से हंस देते हैं, उसके बाद भी वो सोचता है कोई बात नहीं, वो दर्पण के सामने जाके प्रैक्टिस करता है, अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाता है और धीरे 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 वो कार्य करके दिखाता है जो उस दुनिया के लिए असंभव या नामुमकिन था। तो बाबा हमेशा कहता है, बच्चे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आप जा सकते हैं, दिव्य गुणों से संपन्न हो सकते हैं अगर आप अपने उमंग उत्साह को बरकरार रखें। कोई आपको कितना डिस्करेज करे, परंतु मुझे अपना जील एंड एंथुसियाज्म कभी छोड़ना नहीं है, नहीं है, नहीं है, उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये सारी बातें हम अपनी बुद्धि में रखें तो हम सर्वगुण संपन्न बन सकेंगे। गुण तो बहुत सारे हैं, आप सबने देखा 36 गुणों की लिस्ट है, लेकिन ये सारी बातें अगर बुद्धि में रखेंगे तो हमने जो गुण रखे हैं, आपको इशू बेन बताएगी क्या प्लान किया है उसके बारे में, वो बताएंगी आपको। दूसरा, 16 कला संपूर्ण का अर्थ क्या है। 16 कला संपूर्ण का मतलब है, जैसे पहले लोग आपस में मिलते थे, रुपए में 16 आने होते हैं और ये कहते हैं कि भाई आपकी बात रुपए में 16 आने ठीक है, मतलब शत प्रतिशत, सेंट परसेंट। तो 16 कला संपूर्ण का मतलब इसलिए कहते हैं 16 श्रृंगार, 16 कलाएं, है ना। 16 जो है ये क्या है, संपूर्णता की प्रकाष्ठा। चंद्रमा अमावस से लेकर पूर्णमासी तक जितना बढ़ता है उसे कला कहते हैं। पूर्णमासी के दिन वो संपूर्ण प्रकाशमान होता है तो उसे 16 कला कहा जाता है। तो अपनी संपूर्णता की प्रकाष्ठा, इसको कहते हैं 16 कला। अब कला क्या है, किसी भी गुण में विशेषता का होना वो कला है। देखो, आप में स्किल्स हैं और वो आपकी एक कला है, आर्ट है। जैसे देखो, ऐसे तो बाथरूम सिंगर बहुत होते हैं लेकिन गायक कलाकार कोई कोई होता है। बात तो सभी करते हैं लेकिन बात करने का जो लिहाजा है वो देवताओं जैसा हो, ये कला है। भोजन सभी खाते हैं लेकिन भोजन एक बाबा की याद से, एक अदब से और साइलेंस में खाएं, ये भी एक कला है, ठीक है। ऐसे उठने की कला, बैठने की कला, चलने की कला, बातचीत करने की कला, पढ़ने की कला, पढ़ाने की कला, सीखने की कला, जो भी हमारे छोटे छोटे कर्म हैं इसमें यूनिकनेस हो, दैट इज कला। एक एक कर्म कला का काम करे, तभी लोग कहते हैं इसका टीचिंग कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका टीचिंग कार्ड। फिर कहते हैं इसका ना बॉडी जेस्चर से पता चल जाता है ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक्सीलेंट, ऐसे बोलते लोग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी उस चीज की कला है। तो कला हर एक में नहीं होती है, हाथ पांव तो सभी चला लेते हैं लेकिन डांसिंग का आर्ट किसी किसी में होता है, वो कला है। तो अब हमारे अंदर आज खाने की कला है तो बैठने की नहीं, बैठने की है तो उठने की नहीं, उठने की है तो चलने की नहीं, चलने की है तो बातचीत करने की नहीं। सारी कलाओं में हम परफेक्ट नहीं है, तो दे वुड बी परफेक्ट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, हर एंगल से वो संपूर्ण होंगे। इसलिए कहा 16 कला संपूर्ण, कहीं से भी उनमें डिफेक्ट निकालने की मार्जिन नहीं होगी। अब ये कलाएं लिखी हैं, देखिए 16 कलाएं, लेकिन इस कला के पीछे मैं आज चिंतन कर रही थी ऐसे बैठे बैठे कि हर कला के साथ कौन कनेक्टेड है। भाई पढ़ो जरा उधर से कौन कौन सी कला है, हैं? सीखने की कला, सीखने की कला में चाहिए नम्रता। क्या गुण चाहिए? नम्रता। अगर आप में नम्रता है आपको हर व्यक्ति प्यार से कहेगा आओ आओ मैं आपको बताता हूं, आइए वेलकम वेलकम। लेकिन अगर आप में ईगो है आप सीख नहीं सकते हैं। व्यवहार करने की कला, इसमें हमारे अंदर क्या चाहिए? एक हमारे अंदर सरलता का गुण चाहिए। व्यवहारिक क्षेत्र में सरल स्वभाव होना चाहिए। अगर हमारा स्वभाव सरल नहीं है तो आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं लगता है कि ईगो छलकता है। कहते हैं इस आदमी के साथ ना बात करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बोलते हैं, तो व्यवहार में लोग उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी? निश्चिंत रहने की कला। जितना हमारे अंदर समर्पण भाव होगा, जैसे अभी अभी आपको बताया ना कि हम अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर दें। हमारे बड़े बड़े काम बाबा ने करवाए हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता था कि बिल्कुल यानी कि जैसे बिल्कुल होता ना जोर जोर से लहरें और तूफान आता है, लगता था कि काम होने का है नहीं। फिर आता था क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बाबा का काम है ना, आपका थोड़ी है। बस आपका काम केवल एक है, बाकी काम बाबा करेगा। तो हम उस समय ना बाबा की याद में बैठ जाते हैं। जो काम हमसे, वैसे तो हम हर बात में बाबा को याद करते हैं, पर बहुत टफ काम में हम सोचते हैं यो लगा लो और निश्चिंत हो जाओ, बैठा है ना बाबा। तो जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। थोड़ा सा भी आप में मैंपन जो है आपको निश्चिंत नहीं करेगा। आप बताए जीने की कला। तो हमेशा कहते हैं ना जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यानी ये है सर्वाइवल के लिए। तो हम एक इस प्रकार से कोशिश करें कि एक हमारे सामने जैसी परिस्थिति आए, जैसा समय आए, अपने आप को हम मोड़ सकें, फ्लेक्सिबल, तब हम इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे पानी है ना, आप देखेंगे पहाड़ों से नीचे आता है सागर में, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेता है, कहीं ना कहीं से। इसलिए कहीं कहीं सीपेज आती है ना, बहुत बड़े बड़े भी ढूंढ नहीं पाते हैं कि कहां से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। कई बार कितना तोड़ते चले जाते समय, क्योंकि वो ना इतना फ्लेक्सिबल है कि अपना रास्ता बना लेता है वो और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो हमने भी अगर जीना है तो सबके साथ टफ सिचुएशन, टफ पर्सनैलिटीज के साथ रहते हुए भी इतनी फ्लैक्सीबिलिटी लें और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सोचें। ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फ्लैक्सीबिलिटी को हम धारण करें।
परिवर्तन करने की,
परिवर्तन में चाहिए दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। कुछ भी हो जाए मुझे परिवर्तन होना ही है। और एक रियलाइजेशन भी चाहिए, जब मैं सोचती हूं कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक तो मैं कभी परिवर्तन नहीं हो सकती। लेकिन जब मुझे महसूस होता है कि नहीं, ये मेरी ड्रॉबैक है, इस वजह से मैं नहीं पहुंच पा रही आगे, तो फिर मेरे अंदर दृढ़ता हो कि मुझे इसको परिवर्तन करके ही छोड़ना है। तो पहले चाहिए रियलाइजेशन, फिर चाहिए दृढ़ता।
अपना बनाने की,
अपना बनाने की कला, इसमें उदारता चाहिए। उदारता, इतने हम में जेनरोसिटी हो, हर एक को हम अपना बना लें। देखो बाबा थे ना, हर कोई बाबा को बोलता था मेरा बाबा, मेरा बाबा। किसी ने नहीं कहा आपका बाबा, यहां तक कि बाबा ने कहा पच्छड़ताल माल होगा ना, पच्छड़ताल समझते हो, सबसे लास्ट में आने वाला, वो भी कहेगा मेरा बाबा, है ना। क्यों कहा बाबा ने मेरा बाबा? क्योंकि बाबा का हरेक के प्रति अपनापन था, इसलिए बाबा के प्रति हरेक का अपनापन था। तो जब बाबा आंगन में चक्कर लगाते थे तो क्या था, बच्चे पूछते थे बाबा क्या सोचते हैं, बाबा कहते हैं मैं विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस दे रहा हूं, एक दिन तुम्हारे सेवा केंद्र विदेशों तक होंगे। बच्चे आत्माएं पुकार रही हैं, बाबा सब बच्चों को सकाश दे रहा है। और अब हमारी जो बहनें वहां गई वो महसूस करती हैं कि बाबा ने सारा काम करके रखा है, हम जब जाते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे पुराने परिवार के बिछड़े हुए बच्चे मिल रहे हों। तो ये क्या है, बाबा ने उनको भी अपना बनाया।
स्वस्थ रहने की है? स्वस्थ रहने की कला।
देखो, स्वस्थ रहने की कला में चाहिए संयम और नियम। चाहे आपने फिजिकली स्वस्थ रहना है, चाहे आपने मेंटली स्वस्थ रहना है, आप संयम और नियम का पालन करें, आप स्वस्थ रह पाएंगे।
पत्र लिखने की कला।
और इसके साथ एक और भी है,
प्रकाशन और नामाचार कला।
इसके लिए चाहिए स्वाध्याय। जितना आपका स्वाध्याय अच्छा होगा तो आपकी लेखन की कला भी बढ़ेगी और प्रकाशन कला भी बढ़ेगी।
हास्य कला, विनोद कला,
हास्य कला जितनी आप लाइट रहोगे ना, क्योंकि आप अगर आर्टिफिशियल स्माइल दे रहे हैं तो आप हास्य कला में आगे नहीं आ सकते। आप अंदर से लाइट हैं तो आप जो भी बात करेंगे नेचुरल आपका वो होगा, तो उससे दूसरे भी खुश रहेंगे आपसे।
नेतृत्व कला
में सबसे बड़ा गुण चाहिए आप स्वयं, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक नहीं, लीड फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट का मतलब यह है कि आप आदर्श कायम करें और लोग आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करें। तो इसमें हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना है।
पालना करने में
मातृत्व स्नेह, जितना आपका मैटरनल अफेक्शन होगा उतना हम दूसरों की पालना अच्छी कर पाएंगे।
समाने की कला
का मतलब है सबको मैं ये मानूं, ये दे बिलोंग टू माय फैमिली, ये मेरे ही परिवार के बच्चे हैं, है ना। क्योंकि आप नोटिस करेंगे अपने की बात व्यक्ति कभी नहीं फैलाता, अपने की बात कभी नहीं फैलाएगा, लेकिन दूसरे की बात को, छोटी सी बात को भी सबके बीच में बताएगा। कारण कि हमें सबके प्रति अपनापन नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ये सब मेरे हैं, दादी बोलती थी, हैं तो सब मेरे, नहीं है तो मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, हैं तो सब मेरे हैं। ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर मेरा है बाकी मेरे नहीं है, सब हमारे हैं, हम सबके हैं।
बेकार को अच्छा बनाने की कला,
हाँ, वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला। ये इकोनॉमी का संस्कार जिसमें होता है ना, इकोनॉमी, वो लोग वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए रिसर्च करेंगे, हाउ टू मेक बेस्ट फ्रॉम वेस्ट या वेस्ट इनटू बेस्ट।
पढ़ाने की कला,
आर्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग में भी कहता है टीचर शुड बी ए गुड स्टूडेंट। जब तक आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो आपको इस प्रकार से करना है कि आप जितनी अच्छी स्टडी करते होंगे उतने अच्छे आप विद्यार्थी टीचर बनेंगे।
प्रशासन कला
कहते स्वशासन प्रशासन। जिसका स्वयं पर शासन है उसकी प्रशासन बहुत अच्छा होगा, उसे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए बाहर के लोग जब आते ना, कहते हैं स्वचलित शासन है। कोई किसी को बात ऑर्डर पास करता हुआ नजर नहीं आ रहा, हर कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, इसलिए प्रशासन अच्छा चल रहा है। और स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ये मैं आज से सोच रही थी 16 कलाओं में कौन कौन सा गुण कनेक्टेड है, तो हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, राइट। ये हमारी वैसे जगदीश भाई इस पर क्लास कराया करते थे, कलाएं तो उन्होंने बताई हैं, लेकिन आज हम इस पर सोचा, आपको भी कुछ ऐड करना हो तो इसमें कर सकते हैं। और संपूर्ण निर्विकारी का मतलब है, वैसे तो 10 प्रकार के विकार हैं जो रावण के 10 सिर दिखाते ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और तंद्रा। ये 5 विकार तो हमारे को बहुत नामी ग्रामी रोज सुनते हैं, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ और तंद्रा जो है वो आलस्य का विकार है, आलस्य और अलबेलापन। जैसे काम महाशत्रु है ना, ऐसे आलस्य और अलबेलापन ये भी ब्राह्मणों का महान शत्रु है, महान शत्रु, छोटा नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी संपूर्णता में बाधक ही यही है। पोस्टपोन बहुत करते हैं, कोई अच्छा काम होगा ना, करेंगे करेंगे करेंगे, चिंता ना करो, जल्दी क्या है भाई, कर लेंगे ना, हमेशा ऐसे कहेंगे। तो ये क्या है, क्या है ये, पोस्टपोन करने की आदत है, तो ये भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। आलस्य देखो, आलस्य क्या होता है, आप अमृत वेले अलार्म लगा के रखते हैं, आप कहते हैं मैं 5 मिनट में उठता हूँ, और आंख खुली 5 बज गए, है ना, रोज ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आलस्य का विकार, कोई भी तरह का, ये सबसे महान शत्रु है। एक्चुअली हमें संपूर्ण बनने में पहले बाधक यही है। मैं सबको एक बात कहती हूँ कि जो बाबा कहता था कि सवेरे की क्लास वाले बच्चे सूर्यवंशी हैं, हैं बाकी तो अपना टाइम पास करने आ जाते हैं, तो सवेरे की क्लास में बाबा इतना जोर क्यों देता है, क्योंकि जो सवेरे की क्लास करेंगे वो कई सारे डिसिप्लिन इकट्ठे फॉलो करते हैं। पहले वो जल्दी उठेंगे, बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे, उसके बाद अनित्य क्रिया करके फिर बाबा के घर में दौड़ कर आएंगे, फिर फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे बाबा की क्लास को रखेंगे, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। फिर सवेरे का समय ऐसा है जिसमें कोई रिश्तेदारी निभानी नहीं पड़ती, किसी किस्म की कोई बाह्य संसारिक ऐसी चीजें नहीं है जो सवेरे सवेरे आपको जाना पड़े। इवन कंडोलेंस मीटिंग में भी जाना होगा तो 10 बजे के बाद सोचेंगे, होता है ना, चाहे शादी है, रिसेप्शन है, कुछ भी है, सवेरे कुछ भी काम नहीं होगा। तो सवेरे अगर बाधक है तो क्या है, आलस्य और अलबेलापन, और कोई चीज बाधक नहीं है। और जितने हम बहाने बनाते हैं वो हमारे मन की रचना है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो सवेरे बंधन तोड़ के आ जाते हैं, मन का बंधन तोड़ के, वो सबसे आगे पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ते हैं। और ये जो अब विकार है जो बताए, इसमें मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण निर्विकारी समझते ना, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा ने कहा बच्चे आज के सन्यासी कर्म में तो शुद्ध हैं, लेकिन मनसा में भी शुद्ध हो ऐसा नहीं है। तो तुम्हारे मन में भी विकल्प तो छोड़ो, व्यर्थ संकल्प बिना आए, राइट, इतना हमारा अटेंशन जाए। और फिर वाचा हमारी कैसी हो, वाचा कैसी हो, उमंग उत्साह दिलाने वाली वाचा हमारे महावाक्य हो। महावाक्य बाबा ने कहा गिनती के होते हैं बच्चे, वाचा ऐसी एक्यूरेट हो जो आपको बार बार सॉरी ना कहने पड़े, आपको ये ना कहना पड़े आई मीन टू से, व्हाट डू यू मीन टू से, क्या कहना चाहते हैं आप। जब आप स्वच्छ हैं तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप जो बोल रहे हैं एक्यूरेट बोल रहे हैं। वाचा हमारी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, बार बार मिस्टेक करना या ऐसे शब्द बोलना जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है वो भी ध्यान देना है, राइट। तो प्रैक्टिस करनी है, अगर किसी की प्रैक्टिस नहीं है तो अभ्यास करना है कि हमारी वाचा दूसरे को उमंग उत्साह दिलाने वाली हो, और कम बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, ये वाचा पर ध्यान देना है। और बाबा हमेशा क्या कहता है, संपूर्ण निर्विकारी मन वचन और कर्म से, संबंध और संपर्क में और स्वप्न में भी। अगर मान लीजिए कई बार कॉन्शियसली हम गलती नहीं करते हैं, पर मेरे अंदर में कोई विकार का अंश होगा तो मेरे सपनों से मेरी स्थिति का पता चलेगा। और जो साहसी हैं, जैसे माया से नहीं हारने वाले, माया सबको आती है, और हार ना खाने वालों की निशानी होगी, वो नींद में भी हार नहीं खाएंगे, नींद में भी हार नहीं खाएंगे, वो उनको कोई पकड़ ही नहीं सकती माया, क्योंकि वो जैसा करते हैं वही उनके स्वप्नों में आता है। तो संकल्प में भी पवित्रता रहे, ये है संपूर्ण निर्विकारी। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है, थोड़ा सा मैं आउटलाइंस बताना चाहूंगी मर्यादाओं की। ऐसे तो बड़ों के लिए मर्यादा है, यज्ञ के प्रति मर्यादा है, है ना, और स्वयं के प्रति भी मर्यादा है, दिनचर्या में भी बहुत सारी बातें हैं जो मर्यादा से होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल बाबा ने कहा कि बच्चे आप सभी एक बाप के बच्चे भाई भाई हो, लेकिन जब आप ब्रह्मा की संतान हो तो भाई बहन हो जाते हो। तो बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मर्यादा का पालन करना है। तो हमारी क्लास में हमें सिखाया जाता है, देखो यहाँ बहनों की लाइन है, ये भाइयों की है। तो कोई भाई अगर यहाँ आके बैठता है तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट देने वाले हैं उनको बड़े प्यार से कहते हैं कि आप वहां जाके बैठे। ये कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि मर्यादा है, ये मर्यादा है कि आप अपने वहां बैठे। ये सिस्टर्स का साइड है, ये भाइयों का साइड है, बोलते ना। यहां तक कि मैंने कहीं कहीं देखा, बाबा ने हमेशा मर्यादा की बात कही है, बच्चे ध्यान देना है। जब आप रू रिहान करते हैं ना, संगठन में करें, क्लास में करें, अलग से बैठ के रू रिहान ना करें, यह भी मर्यादा है। अगर अलग से बैठ के आप रू रिहान करते हैं तो कभी कभी धीरे 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 फैमिलियरिटी आते आते आप अपने दिल की लेनदेन करना शुरू कर देते हैं। और जब दिल की लेनदेन करना जिससे आपने शुरू कर दिया, वहां माया का दरवाजा आपने खोल दिया, और माया डेफिनेटली आएगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि हमारी दादियां हमें इतना पाठ पक्का कराती थी। मुझे याद है हंसते हंसते चंद्रमणि दादी हंसते हंसते कह देती थी, उनकी बात किसी को बुरी लगती नहीं थी, क्योंकि उस समय तो ज्यादा लोग होते नहीं थे, हम दादियों के ना चारपाई पे जाके बैठ जाते थे उनके साथ। तो एक बार किसी कुमार ने कहा कि दादी मुझे सेंटर पे रहना है, मैं रह सकता हूं? दादी कहती है नहीं, तू कुमार है ना, तू सेंटर पे नहीं रह सकता। सेंटर पर रहने के लिए पहले दादी तुमको टेस्ट करेगी, ऐसे हम नहीं भेजेंगे। फिर दादी हंस भी देते थे। उस कुमार को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, वो बाहर आके बोलता है दीदी कितना अच्छा दादी ने इतने प्यार से बोला, मेरे को तो नियम का पता ही नहीं था। राइट, क्योंकि ये इतनी पवित्र और ट्रांसपेरेंट दादियां थी, हंसते हंसते कुछ कह देती थी, किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि खुद पवित्रता में नंबर वन, ये मर्यादा थी। और आज भी दादी ने डिसिप्लिन बनाया था, आज भी पंजाब में है कि एक टेबल पे बैठ के भाई बहन इकट्ठा खाना नहीं खा सकते, ये मर्यादा है। भाई बहन इकट्ठा बैठ के एक टेबल पे खाना खाएं वो नहीं खा सकते, अकेले में बैठ के रू रिहान नहीं कर सकती, एक बहन एक भाई के साथ लंबे समय तक बातचीत नहीं कर सकते। आपको प्लान करना है, आप अपने ग्रुप में बैठिए, उनको मोटिवेट करें। और ये कहा जाता है कि जब कभी क्लास वालों के लिए क्या मर्यादा है, जैसे देखिए आप सभी आपस में, टीचर ने विश्वास से कह दिया कि आप ये प्लान करो, कहीं कहीं क्या होता है कि वो पार्टी बनाने लगते हैं, ग्रुप बनाने लगते हैं, और ग्रुप बना करके क्लास में ही दो या दो ग्रुप हो जाएंगे, इस प्रकार से डिविजन्स। ये करना बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है। और अगर हमें कोई बात ये समझाई जाती है, बड़े समझाते हैं कि देखो भाई आपके इस कर्म से वातावरण बन रहा है, और मैं कहती हूँ मेरी इंटेंशन बुरी नहीं है, तो मुझे जिद करने की जरूरत नहीं है, मेरी इंटेंशन बुरी नहीं है, तो जो दादी जी कह रही है वो कर लो। आप क्यों इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि मेरी इंटेंशन बुरी नहीं है, मैं तो करूंगी? नहीं, नो नीड, नो नीड। आप सेक्रीफाइस करें, जैसा बड़े कह रहे हैं वैसा कर लें। इसमें आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और वातावरण को बहुत कूल बना रहे हैं, शांत बना रहे हैं, और दुआओं के पात्र बन रहे हैं। तो ये कुछ मर्यादाएं हैं कि हमें कैसे मिलना है, कैसे बैठना है, कैसे। यहां तक मैंने कई सेंटर्स पे बहुत अच्छा देखा। मैं गुजरात में एक जगह गई थी, वहां पर बहनों का जो ब्लॉक था वहां सीढ़ी पर लिखा था बिना आज्ञा अंदर आना मना है। ये भी नियम होता है, मर्यादा है कि कई सीधा ही जाके प्रवेश कर जाएंगे। अब वो बहन किस स्टेज में खड़ी है अपने रूम में, ऐसा भी मर्यादा बताते हैं। तो ये मर्यादाएं अगर हम पालन करते हैं तो डेफिनेटली सतयुग में हमारा प्रवेश अच्छा होगा। अगर हमारा यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, परिवार जरूर है लेकिन इंस्टीट्यूशन भी है, फैमिलियरिटी नहीं चाहिए। और जिन जो लोग शुरू से डिसिप्लिन में बहुत अच्छे रहे हैं, उन्होंने भगवान की पताका बहुत दूर तक फैला दी है। जो अभी तक नहीं रहे वो दूसरों को बता भी नहीं पाते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है मर्यादाओं का। और ऐसे ही क्या, क्योंकि मर्यादा पालन करके पुरुषों में उत्तम देवता बनना है। वो भी पुरुष थे पर उत्तम क्वालिटी के पुरुष थे। आज जो पुरुष हैं वो कनिष्ठ हैं और ये उत्तम क्वालिटी के पुरुष थे। तो हमने क्या बनना है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो चीज इनमें थी वो हमने अपने में लानी है। और फिर अहिंसा परमो धर्म। देखो ये बहुत दो बातें हैं, बाबा ने मुरली में बहुत बार कहा बच्चे दो तरह की हिंसा है, एक काम की हिंसा, एक क्रोध की हिंसा। क्रोधवश हम किसी के साथ, यहां तक कि कोई किसी का मर्डर भी कर देता है वो भी क्रोध की हिंसा में गिनेंगे। बाबा ने कहा क्रोध में सतो रजो तमो तीन आता है, किसी मन में संकल्प आया, फिर आपने शब्दों में कहा, फिर आपने कर्म में कर लिया। तो मन में आया तो क्या है, ये सतो क्रोध है, फिर वचन में आया तो रजो हो गया, कर्म में हो गया तो तमो हो गया। तो क्रोध की हिंसा है, उसमें आवेश में आना, गुस्सा करना, जल्दबाजी करना, नफरत करना, घृणा करना, राइट, किसी पर व्यंग करना, ये नाराज होना, मूड ऑफ करना, ये सब क्रोध के ही लक्षण हैं। लेकिन इसके बाद एक जो बात है काम की हिंसा, बाबा ने कहा वहां हर नर नारी के सिर पर दोहरा ताज होता है, दोहरा ताज, एक पवित्रता का ताज, एक राजाई का ताज। और जब हम सतयुग में थे आदि स्वरूप में तो दोहरा ताज था, ठीक है, यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि वहां राज्य सत्ता धर्म सत्ता एक के हाथ में थी। यहां क्या है, धर्म सत्ता एक के हाथ में, राज्य सत्ता दूसरे के हाथ में। क्यों? क्योंकि पवित्रता खत्म हो गई। तो बाबा ने कहा वहां काम की हिंसा भी नहीं। और काम की हिंसा को बाबा ने इतने तक कहा है बच्चे एक है जीव घात और एक है आत्मघात। जीव घात मतलब किसी ने किसी के शरीर का मर्डर किया, परंतु आत्मघात क्या है कि आपने उसकी पवित्रता की स्टेज से उसे नीचे लाया, तो ये आत्मघात है। आत्मघाती महापापी, कहा ना बाबा ने कई बार, तो सतयुग में इस प्रकार का आत्मघात नहीं होता। और बाबा ने कहा अगर यहां थोड़ा भी मन में भी आता है संकल्प तो बच्चे चलाना नहीं है, चलाना नहीं है, यहां चलाना वहां चिल्लाना, यहां चला लेना वहां चिल्लाना। शिव बाबा धर्मराज के रूप में पेश आएगा, अभी तो पिता के रूप में प्यार से समझा रहे हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैंने वो नोट करके रखा, बाबा ने कहा जैसे आपका जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो जाते हैं जब आपकी एक सेकंड में पावरफुल बीज रूप की स्थिति होती है, पावरफुल बीज रूप की स्थिति आपके कई विकर्मों को नष्ट कर देती है, ऐसे ही अगर आपको बहुत पावरफुल, पावरफुल मैं नहीं कहूंगी, पॉजिटिव टर्म है, मतलब बहुत तेजी से विकार आता है आपके मन में, तो वो एक सेकंड का संकल्प आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य को दग्ध कर देता है। बच्चे इतना पाप है इसका, इसलिए किसी भी हालत में बच्चों में फैमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए। ये है आदि स्वरूप, ये है आदि स्वरूप। और अभी हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि सतयुग में जो देवी देवताएं हैं ये किसका स्वरूप है, किसका स्वरूप है, ये देवताओं का स्वरूप किसी और का है या हमारा है, किसका है, हाथ उठाओ। यस, बहुत अच्छा, निश्चय है ना, निश्चय है ना, ये तो नहीं, हाँ दीदी सुन तो रहे हैं, पता नहीं हमारा है कि नहीं, हाँ बाबा ने कह दिया होगा, हमें तो याद नहीं है, ऐसे भी कई कहते हैं, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस समय निश्चय कर लिया ना ये मेरा ही स्वरूप है, तो जब मेरे जड़ चित्रों को लोग बाद अब नमन करते हैं, मैं तो चैतन्य में बनने जा रही हूं तो मेरे में विकार कहां से आएगा, मेरे जड़ चित्रों से इनके नैनों में इतनी रूहानियत है, इनके मस्तक पर इतना तेज है, इनके हस्त वरद हस्त हैं, इनके चेहरे पर दिव्यता की मुस्कान है, इनके कमल चरण कमल के समान है, इनके एक एक अंग की उपमा कमल से की है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सदा लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने बेडरूम में लगाओ, बहुत माइन्यूटली इनको ऑब्जर्व करो, देखो इनका मस्तक कैसा है, इनके नैनों में कितनी रूहानियत है, प्रॉस्पेरिटी की कहीं कमी नहीं थी, रतन जड़त सिंहासन अद्भुत छवि राजे, रत्नों से जड़े सिंहासन थे, अद्भुत इनकी छवि थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी इतने इनोसेंट, इनोसेंट इनकी दृष्टि में देखो इतनी इनोसेंट स्टेज, जैसे विकार क्या होता है इस बात से अनभिज्ञ थे। और इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा किस चीज का नाम है इस बात का ज्ञान उनको नहीं था। कारण बाबा ने कहा वहां आत्माभिमानी स्थिति रहती है। कौन सी स्थिति रहती है? आत्माभिमानी। परमात्मा अभिमानी नहीं होंगे लेकिन आत्माभिमानी होंगे। तो सार में अगर हम अभ्यास करें आत्माभिमानी स्थिति का और शिव बाबा को याद करेंगे तो पुनः हम अपने आदि स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। ओम शांति। एक साल तक इसका अभ्यास करना है अलग अलग गुणों के साथ। ठीक, अभी हमारी ईशु बहन जी थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे।
ओम शांति। आदरणीय सरोज दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें आदि स्वरूप इस विषय पर बहुत ही सुंदर और गहराई से मार्गदर्शन किया कि सत्युग में जाने की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए हमारे अंदर। बहुत ही सुंदर रीति से 16 कलाओं का विस्तार भी हमें बताया। तो दीदी जी का हम करतल ध्वनि से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हमारे मध्य येशु बहन जी आ रहे हैं जो दिल्ली से हैं। तो आपका संक्षिप्त परिचय ऐसा है, आप 1990 से राज्योग का अभ्यास कर रहे हैं, इंदौर हॉस्टल से आपने पालना ली है, वर्तमान में आप एक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल ट्रेनर के रूप से मशहूर हैं। दिल्ली के आसपास के दिल्ली के पास में आप जानते ही होंगे कि ORC अर्थात ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, वहाँ से आप पधारे हैं। वहाँ पर अनेक कॉरपोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, विशेषकर आप इन विषयों पर वहाँ पर ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पाथवेज टू सक्सेस, टीम बिल्डिंग, इंस्पिरेशनल लीडरशिप स्किल्स एंड मैनी मोर। ORC में अनेक विंग्स के प्रोग्राम्स होते रहते हैं और आप उनका सुचारू रूप से कोऑर्डिनेशन करते हैं, और आप इंटरनल कोऑर्डिनेटर के रूप से भी, इंटरनल ऑडिटर के रूप से भी आप सेवा देते हैं। और येशु बहन के लिए कुछ पंक्तियां हैं। येशु बहन के लिए कहेंगे कि व्यक्ति एक है, खूबियां और विशेषताएं और सेवाएं अनेक है। व्यक्ति एक, खूबियां विशेषताएं और सेवाएं एक, लेकर करते हैं सेवा, करते हैं सेवाएं लेकर प्रभु का साथ प्रभु का एक, करते हैं लेकर साथ प्रभु का एक। आज आप हमें प्रोजेक्ट नंबर 4 जो आदि स्वरूप है कि वर्ष भर के लिए रूपरेखा क्या होगी, हमें क्या पुरुषार्थ करना है, ऐसी अनेक बातों पर हमें प्रकाश डालेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। गुड इवनिंग। दीदी का हम सुन रहे थे और बाबा तो ये आदि स्वरूप हमें बहुत समय से कह रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारी स्वोन्नति के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं अपना अनुभव इसमें सुनाऊं तो स्टडी हम इतनी नहीं कर पाते, कॉन्शियस सेवा पे हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट्स को लेते हैं तो स्टडी पे बहुत फोकस हो जाता है, और स्टडी पे फोकस होता है तो ऑटोमेटिकली वो सेवा पर भी उसका रिफ्लेक्शन आता ही आता है। तो मेरा इस प्रोजेक्ट में आना और सरोज दीदी का बहुत फेथ रखना, ये दोनों ही चीजें बहुत साथ साथ चली, और आदरणीय आशा दीदी और भाई सब का, क्योंकि साथ में रहते हैं ORC, तो भाई सब का भी और दीदी का भी बहुत सहयोग मिलता है कैसे करें। हमको इतना नहीं अनुभव होता लेकिन बड़ों से बहुत अनुभव सीखने को मिलता है। और आज सरोज दीदी ने बहुत डिटेल में, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए हम ज्यादा उसके ऊपर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें करना क्या है वो थोड़ा सा हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि जैसा हमने पाया है पिछले 3 साल में प्रोजेक्ट स्वदर्शन चक्रधारी, सो विश्व राज्य अधिकारी का ये 3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। पहला साल जो प्रोजेक्ट चला तो उसमें 5 स्वरूपों को हमने लिया, और अभी जो पीछे 2 साल से प्रोजेक्ट चला तो लॉकडाउन शुरू हुआ, और लॉकडाउन शुरू हुआ तो और अच्छा हमें समय मिला इसको रिफाइन करने का। सिर्फ प्रोजेक्ट को रिफाइन करने की बात नहीं, अपने आप में पुरुषार्थ में उसको लाने का और इम्प्लीमेंट करने का। तो पिछले साल हमने किया पूरा 6 मंथ फरिश्ता, और फरिश्ते के बाद अव्यक्त स्थिति 6 महीने किया। तो इस तो हमें ये दिया, और अभी अगर हम आगे देखें तो अब आप देखिए कितना सिंपल चीज है। फरिश्ता हम कहते हैं, दादियों से सुनते हैं, बाबा से सुनते हैं, लेकिन जैसी कोई बात आती है उसमें बहुत जल्दी जल्दी हम लोग अपने आप को मूड भी फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं। तो फरिश्ते से 6 महीने में एटलीस्ट ये तो हुआ कि हम थोड़ा सा उसको स्वरूप में भी ला पाए और अपनी स्थिति में भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो फरिश्ते के बाद अव्यक्त हमने किया व्यक्त स्थिति के ऊपर, और जैसे ये दोनों हमने स्वरूप किए और अब जो लिया वो आदि स्वरूप। तो काफी मीटिंग्स चली और उसके बाद सरोज दीदी ने ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमें ये कही कि आप पूरे के पूरे गुण लो, पूरे के पूरे जो सर्वगुण संपन्न है वो पूरे लो, और कलाएं पूरी लो, क्योंकि हर चीज की स्टडी को डीपली करो, आधा आधा उसको नहीं करो। तो उसी हिसाब से आज आपके बीच में जो प्रोजेक्ट रखा था आदि स्वरूप, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। दीदी को भी बोला है, दीदी बैठे रहे हैं आप, ताकि आप बैठेंगे तो हमारे को एक शक्ति आती रहेगी। तो पहला क्या था, सबसे पहले सर्वगुण संपन्न, दूसरा 16 कला संपूर्ण, तीसरा संपूर्ण निर्विकारी। बहनों की तो नहीं आवाज आ रही है, अच्छा, और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम, और लास्ट अब सबकी आनी चाहिए। हाँ, नहीं आई, आई सर, वो एक्चुअली वो आदि स्वरूप अभी मुरली सुन के क्लास सुन के वो शुरू हो गया है ना, तो ये वाला है। हमको गायन याद रहता है, गायन के साथ साथ उसमें करें क्या वो दीदी ने आपको बताया, तो हम शॉर्ट में अभी उसको बताते जाते हैं। जैसे ये सर्वगुण संपन्न है तो सबसे पहले है यथार्थता। यथार्थता मतलब होता है इंग्लिश में एक्यूरेसी। अब मैंने तो एक्यूरेसी से काम कर लिया, पर कुछ क्षण लगता है कि जिनके लिए किया उनको ठीक नहीं लगा, या उस हिसाब से जैसे बड़ों का अनुभव है वैसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक्यूरेसी से किया तो मेरे तो अकाउंट जमा हो गए। तो ऐसे एक्यूरेसी, हम एक सप्ताह में एक्यूरेसी लेंगे और उसी एक सप्ताह में हम लेंगे गुण ग्राहकता। तो 3 दिन एक्यूरेसी चलेगा, मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे, और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे चलेगा गुण ग्राहकता। अब एक क्वेश्चन आता है कि संडे क्या हुआ, क्योंकि 6 दिन पूरे हुए, बाकी का 1 दिन रह गया। उस 1 दिन में हम करेंगे उसका रिवीजन, दोनों स्वरूपों का रिवीजन। और ये इसलिए सक्सेसफुल होता जा रहा है क्योंकि अभी हमारे सब भाई बहने इसको समझने लग गए, और एक धीरे 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 वो एक स्टडी सर्कल बन गया, एक टीम बनी है। तो अब उस टीम में क्या होता है, रात को ही वो चार्ट भरते हैं, 8:30 से 9 हम जूम पर मिलते हैं, एक अव्यक्त मुरली का छोटा सा हम एक पैराग्राफ लेते हैं, पूरी मुरली नहीं लेते। बाबा ने जैसे निर्माणता के लिए पीछे कहा, अभी साकार मुरली में भी कहा कि सफलता का आधार है सेवा में नम्र बनो, तो निर्माणता की वो पूरा एक पैराग्राफ था, उसको लेते हैं पढ़ते हैं, और जो भाई बहने उसमें जुड़ते हैं वही अपने अनुभव से उसको पढ़ते जाते हैं और समझाते हैं। फिर सरोज दीदी महीने के अंत में या महीने के स्टार्टिंग में गाइड करती हैं कि आप जो कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है हम ब्राह्मण बहुत सारी चीजें सुनते हैं पर एक्चुअली में राइट क्या है वो पता नहीं होता, हमारा मंथन भी राइट है नहीं है, या हम एक्यूरेट हैं नहीं है। क्योंकि अगर हम चले तो इस साल की थीम है टूवर्ड्स परफेक्शन, जो कल आपने देखा, तो वो टूवर्ड्स परफेक्शन में हमें जाने के लिए वी शुड नो कि हाउ टू गो। तो उसके लिए फिर दीदी हमें गाइड करते हैं, ऐसे करें ऐसे करें। और मीन वाइल आशा दीदी से समय प्रति समय, क्योंकि पास में रहते हैं तो दीदी से पूछती रहती हूँ कि दीदी ऐसे है या नहीं है, तो वो सब चीजें इसमें गाइड मिलता रहता है। तो ऐसे हम करेंगे सप्ताह में 2 गुण, और लास्ट संडे के दिन उन दोनों गुणों के ऊपर रिवीजन। तो ये होगा हमारा सर्वगुण संपन्न। और इसमें आप देखेंगे जो 36 है, तो टोटल मिला के अगर हम इसको हाफ करें तो हमारे 2 महीने में ये पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं, आप बोलेंगे हम फिर स्लाइड चेंज करेंगे। इसके बाद किस पे चलेंगे? आई नहीं आवाज। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट। 16 कला संपूर्ण, उसमें तो सरोज दीदी ने बहुत अच्छा एक गुण जो लिया, संतुष्टता है ना, वो है, तो सारे गुण उसमें आते हैं। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, और जगदीश भाई साहब की इसमें मैं बुक पढ़ रही थी, बहुत डेप्थ में हर एक चीज का उसमें दिया है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन हम पुट करें, मानो मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आ भी रहा है, तो वो उस बुक में आपको रेफरेंस मिलता है। तो इसमें जो पहला होगा सीखने की कला, तो ये 7-7 दिन के लिए होगा, मतलब 7 दिन हमें इस पे अभ्यास करना है सीखने की कला क्या है। अब उसमें हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बाबा अव्यक्त बाप दादा ने जो मुरलियां चलाई हैं उससे लेते हुए कोई अपना हम उसपे डालने वाले नहीं है। अब बाबा की मुरली से एब्स्ट्रैक्ट लेके वही मुरली को हम मंथन करने वाले हैं। तो यह है सीखने की कला, ये 7 दिन। तो ऐसे ही 16 हमारी कलाएं हैं, तो 16 कलाएं हम 7-7 दिन में पूरा करेंगे उसको। फिर हम आगे चलते हैं, देखो हम पीपीटी चेंज ही नहीं करें जब तक आप बता नहीं रहे, तभी हमें पता तो चले आप सुन रहे हैं। अभी नहीं दीदी आवाज आई है आपको? आ गई दीदी, कह रहे संपूर्ण निर्विकारी है ना, संपूर्ण निर्विकारी तो इलैबोरेट तो हुआ, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। आप इसको ऑटोमेटिकली देखें तो हफ्ते में एक मनसा पे वर्क होगा, दूसरे हफ्ते में वर्क होगा वाचा पर, और ऐसा अगर थोड़ा लॉजिक माइंड चलता रहता है, आप देखो अगर मनसा पे वर्क होता है ना, वो ऑटोमेटिकली वाचा पर आता है, वाचा पे होता है तो वो कर्मणा और मनसा पर जाता है। तो डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं है कि एक मनसा मनसा पे चलेंगे, लेकिन मनसा क्या है उसको स्टडी करेंगे। ये पूरा महीना चलेगा, एक हफ्ते मनसा, एक हफ्ते वाचा, तीसरे हफ्ते कर्मणा और चौथे हफ्ते संबंध संपर्क। और इसमें एक चीज जो मन में आ रही है कि इसका रिवीजन, तो इसका रिवीजन हम बीच बीच में करते रहते हैं, जैसे जैसे हमें सरोज दीदी की गाइडेंस मिलती है या दीदी को कभी लगता है कि ये संडे हम करते हैं, तो उस संडे पे फिर हम सब भाई बहने या तो हम ORC में प्लान करते हैं फिजिकल आए, या दिल्ली के सेंटर्स पे, अलग अलग सेंटर्स पे जाके हम उसको प्लान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, मैं आपको उसके डिटेल में इसलिए लेके नहीं जा रही क्योंकि ऑलरेडी क्लास बहुत अच्छे से दीदी ने डिटेल में सब चीजें बताई हैं। मर्यादा नहीं आई, अब तो दिख रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम उसने तो बताया। तो ऐसे ही स्व प्रति मर्यादा, बाबा के प्रति मर्यादा, यज्ञ प्रति और संबंध संपर्क प्रति। अगर आज के हम दौर में देखें तो हमारा यज्ञ बहुत आगे जा चुका है, और आज तो बाबा का नाम, बाबा जी कैसे कहते थे ना कि प्रत्यक्षता हो, वो भी धीरे 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 हम बच्चों से ही हमारे व्यवहार से होती जा रही है। लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो मर्यादा क्या है, हम सोचते हैं ये मर्यादा मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन बाबा ने वो मर्यादा यज्ञ के हिसाब से क्या बताई, बड़े हमें क्या बताते हैं, इस पे ये सब पूरा पूरा महीने हम इस पे करने वाले हैं। और लास्ट आएगा अहिंसा परमो धर्म। इसको जब किया, हम लोग ने प्लान कर दिया था, पर जैसे ही सरोज दीदी ने हमारी मीटिंग में एंटर किया तो पूरा प्लान चेंज हो गया था, क्योंकि दीदी के उस अनुभव से कहते हैं कि इसके डेप्थ में जाओ, अभी ये ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर तो हम सुनते ही रहे, और इसके डेप्थ में जाएं तो फिर ये पूरे डेप्थ में जाके, क्योंकि अगर आप देखें काम जीत है तो स्मृति दृष्टि वृत्ति कृति जो कहते हैं, तो उस हिसाब से इसका एक एक अच्छे से बताएंगे कि स्मृति से कैसे हम देही अभिमानी बनेंगे। तो देही अभिमानी बनने के लिए हमारी स्मृति में क्या चाहिए कि मैं स्पार्क में आई हूं, क्या मैं एक आत्मा हूं, तो ऐसे करके फिर सुखदेव, और फिर नीचे क्रोध जीत के लिए ईर्ष्या घृणा चिड़चिड़ापन और मैपन। और आप देखेंगे तो बाबा ने 2 हफ्ते पहले की मुरली में ये सारी चीजें बताई थी, अव्यक्त मुरली में बताया था कि उमंग उत्साह अगर हमारा डाउन होता है तो बाबा ने उसके 4 बातें बताई थी, अगर आप उसको याद करें तो। ये चीजें क्या है, इसके डेप्थ में जाना है। ईर्ष्या क्या चीज है, घृणा क्या चीज है, बात आप कहेंगे सब घूम फिर के एक चीज है, लेकिन डेप्थ में जाएंगे तो वो अलग अलग हमें मिलता है। अब इसको हम करेंगे कैसे, आपको ये सब समझ में आया, एक बार हाथ उठाएं कि ये सब चीजें समझ में आई। पीछे जो नहीं हाथ उठा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा आप सुन पा रहे हैं नहीं, थैंक यू सो मच, अब अपने लिए ताली भी बजा लें, थैंक यू। अब आप ये देखिए अभ्यास में क्या होगा, 1 सप्ताह 2 गुण जो आपने उसमें देखा सर्वगुण संपन्न में, तो वो 18 सप्ताह तक चलेगा। बाकी सभी प्रत्येक पॉइंट 1 सप्ताह चलेंगे, जिसको हिंदी में यहां लिखा है 32 सप्ताह तक चलेगा वो। और प्रारंभ तिथि इस प्रोजेक्ट की, प्रारंभ तिथि वैसे तो हम शुरू कर चुके थे अनऑफिशियली थोड़ा सा, लेकिन ऑफिशियली इसको ब्लेसिंग्स लेके और आगे इसको शुरू करेंगे 16 मई से। और इसका टोटल 52 वीक्स रहेंगे, तो 2022। और बाबा चाहता है कि जितना समय नजदीक आ रहा है तो होप के कृष्ण के समान, जो बाबा ने कहा एम अपना रखो, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, तो वो हमारा इस प्रोजेक्ट का एम है कि हम नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। और दीदी उसमें कह रहे थे भगवती है ना, वहां पर कह रहे थे दीदी कश्मीर में उनको क्या कहते थे, भगवती के बोलते थे। तो नेक्स्ट, और ये वाला है कि जैसे आपको छोटे छोटे एब्स्ट्रैक्ट उसमें मिलेंगे, और उस एब्स्ट्रैक्ट में कभी कभी क्या होता है, ये आप सबके फीडबैक से इसको रिफाइन किया है। हम कभी ना व्हाट्सएप मैसेज पढ़ नहीं पाते, लेकिन हम बर्तन मांज रहे होते हैं या सेंटर पे कुछ काम कर रहे होते हैं या हम ऑफिस जा रहे होते हैं, तो अगर ऑडियो आ जाता है तो वो कहते हैं हम उसको सुन लेते हैं। तो ऑडियो छोटी छोटी सी बनाई है, बना रहे हैं ताकि आप उसको सुने। अगर पढ़ नहीं सकते, समय नहीं है, तो हम उसको ऑडियो के माध्यम से भी आपके पास तक पहुंचाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट की चेकिंग मंथली बेसिस पे। ये बहुत सिंपल है, देखिए अगर आप दिल्ली की बात करें, और बहन जैसे कह रही थी कॉर्पोरेट में, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ सरोज दीदी, आपको भी शायद, क्योंकि दीदी भी पूरा ORC दीदी भी हमारे साथ रहे हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं, मतलब कंपनीज जाते हैं या कई इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वो कहते हैं कितने टाइम के लिए आपका लेक्चर रहेगा, हमने कहा 1 ही घंटा, वो कहते और वो कहते हैं 1 घंटा पक्का, तो वो पूरा साइन लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि उनको पता है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। तो हम उनको कहते हैं हम 10 बजे से 11 बजे तक के सेशन के लिए आए हैं, हम 11 बजने से 5 मिनट पहले ही छोड़ देंगे, तो वो इस चीज को करते हैं, क्योंकि हर चीज में वो टाइम लिमिट और वो एक्यूरेसी, उस चीज को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो भी हमारे आप अपने आप को वो इम्पोर्टेंट करते। ऐसे ही इस चार्ट को बनाने का बहुत सिंपल, क्योंकि आप ऑफिस भी जाते हैं, कल भी मैंने जैसे आपको वहां पे बताया था, हम ऑफिस जाते हैं, सेंटर की अपनी बहनों के साथ की बहुत सेवाएं होती हैं, हम लोग भी हैं, हमारे पास भी सेवाएं हैं, तो आपके पास भी घर भी है, गृहस्थ भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो उस हिसाब से बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स इसमें लिए हैं। अगर इसमें आप पहला देखेंगे तो अमृत वेला, वो तो हम सब ब्राह्मण करते हैं, तो अमृत वेले का एक बहुत अच्छा, रात को ही एक सर्कुलेट हो जाता है अमृत वेला, बाबा ने अमृत वेले के लिए क्या कहा है। तो 10 बजे जब सोते हैं, 10:15 बजे, तो वो फोन तो देखते ही हैं सभी, तो फोन देखते हैं, उसमें 10 बजे अमृत वेला, 10 बजे से पहले 8 या 9 के बीच में वो नोटिफिकेशन हर एक के मोबाइल पे आता है, जो ग्रुप से ऐड है, जो ग्रुप में ऐड नहीं है उनको नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा या मैसेज नहीं मिल पाएगा। तो अमृत वेले के लिए उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, वो भी अपना नहीं, अव्यक्त बाबा ने अमृत वेले के लिए जो कहा है, महत्व दिया है, वो महत्व उस पे होता है। दूसरा मुरली स्टडी, क्योंकि मैंने जब आशा दीदी से बात की, हम जब ये 3 साल पहले, तो दीदी ने एक चीज जो मुझे कही, मुझे लगा अच्छा, कहते हैं जो बाबा की डेली की साकार मुरली है उसी के ऊपर ही मंथन करते रहो। अगर अव्यक्त मुरली आती है तो अव्यक्त मुरली पे करो, क्योंकि डेली की मुरली, बाबा डेली का होमवर्क भी देते हैं, डेली हमें शिक्षाएं भी देते हैं और बहनों के साथ चलने का तरीका या सेवाओं में आगे बढ़ने का तरीका डेली की साकार मुरली से हमें मिलता है। तो बाबा की जो डेली की मुरली है वो काउंसलिंग का काम करती है, इसलिए मुरली पे विशेष फोकस रखा है, क्योंकि सर्व गुण संपन्न बनने के लिए, 16 कला बनने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए, परफेक्शन के लिए मुरली में बाबा अमृत वेले के लिए भी बताएंगे, सेवा के लिए भी बताएंगे, धारणा के लिए भी बताएंगे। तो मुरली का जितना ज्यादा मनन, और अव्यक्त मुरली जो रात को हम पढ़ते हैं वो छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट है, तो दोनों मुरलियों का मनन अच्छे से हम करें। और तीसरी चीज है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको व्यवहार में इम्प्लीमेंट करना। तो डेफिनेटली जब हम पढ़ते जाते हैं ना कोई चीज, सुनते जाते हैं आप आत्मा है, आप आत्मा है, आप शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तो आई थिंक वो धीरे धीरे फिर मन में और व्यवहार में, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में वो शुरू हो जाता है। ऐसा है आप सबके साथ, है ऐसा नहीं है ना? तो वही चीज है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। कि अगर कोई भी गुण जो दीदी ने बताया, संतुष्टता, बहुत चीजें हैं जो हमारे तरीके से नहीं चलती या हमारे तरीके से चलती हैं लेकिन मन संतुष्ट नहीं है, तो मुरली पढ़ते जाएं, उसको इम्प्लीमेंट देखते जाएं, और उसमें बहुत गुण बाबा देते हैं, उन गुण को हम प्रैक्टिस करते जाएं और स्वरूप में लाएं। अब समय है कि हम उस जो भी हमने पढ़ा, पालना ली, उसका स्वरूप बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो ये है तीसरा है। चौथा है ट्रैफिक कंट्रोल, वो तो आई थिंक अब सब हम करते हैं, अब देखते हैं तो सब भाई बहने आजकल सब ही, इवन सेंटर्स पे भी अपने आप या तो मोबाइल में चलने लगता है वो उसमें। और लास्ट है नुमा शाम का योग, जो अभी भी हम करने वाले हैं, और लेटर राइटिंग। मुझे एक बार दादी जानकी जी जब मिले ओआरसी, तो उन्होंने बोला कि आप रात को लिखेंगी ना, दादी तो हम तो बहुत छोटे, दादी कहती है आप रात को लिखेंगी तो बाबा आपकी थकान ले लेगा, इसलिए रात को बाबा को लिखकर सो जाओ, और कोई किसी से क्षमा मांगनी है, कोई गलती है उस व्यक्ति से क्षमा मांगो ठीक है, लेकिन बाबा को कह दो बाबा आज ये मनसा में, वाचा में, कर्मणा में ऐसा हुआ, तो बाबा आपको उसी दिन उसी समय आपको रिलैक्स कर देगा और आप निश्चिंत हो जाएंगे। इसलिए इसको रखा है कि लेटर, हम लेटर राइटिंग रखें। और ये जो चीजें आपके सामने रखी हैं, हमारी टीम में ही ऐसा डिसाइड किया कि जब हम रात को 8 से 8:30 से 9 हम मिलते हैं, उसी में ही उसी टीम के अंदर ही दीदी वो चार्ट भर देंगे, ताकि उनको अलग से समय देना ना पड़े। और उसी के बीच में उन्होंने अगर कुछ मंथन किया है तो हफ्ते में एक दिन ऐसा रखते हैं कि उनका मंथन क्या है, ताकि उसको दीदी सुने, बड़े सुने और उस पे फिर बताएं। तो ये चार्ट है, ये समझ में आया आप सबको, ये चार्ट है। नाउ द नेक्स्ट टूल, लास्ट टूल, ये आप देख रहे हैं जयंती दीदी और वेदांती दीदी, सरोज दीदी ने भी, आशा दीदी ने भी, भाई सब ने भी, जो प्रोजेक्ट ये चल रहा है, इसी प्रोजेक्ट को हमने ORC के यूट्यूब चैनल पर एक दिन सैटरडे के दिन अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज चलती है, जो लॉकडाउन में शुरू की गई थी, ताकि भाई बहनों को क्लैरिटी भी मिले और उनका मनन अच्छा हो और उनको हर चीज स्पष्ट तरीके से समझ में आए। तो इसी वाले आदि स्वरूप को, हर गुण को, जो भी गुण आपने देखे उन गुणों के अनुसार मुरलियां ढूंढ ली हैं, उस मुरलियों को लेकर, ताकि इस प्रोजेक्ट की क्लैरिटी भी मिलती रहे, और ORC के यूट्यूब चैनल पर सैटरडे के दिन 7:40 to 8:15 आधा घंटा कहें या 35 मिनट कहें, ये पूरा स्लॉट चलेगा जिसमें अच्छे से मंथन होता है। तो आदरणीय जयंती दीदी, मोहिनी दीदी सब आते हैं, अपना मंथन देते हैं, और भाई बहनों के जो क्वेश्चंस होते हैं मुरली से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो क्लियर होते हैं। हाँ, आप यू आस दीदी कहते हैं कि उसमें क्या होता है बताओ, आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं मुरली का, जैसे मानो एक्यूरेसी की मुरली हमने निकाली, अब एक्यूरेसी की मुरली के लिए मानो सरोज दीदी को बोला कि दीदी आप मंथन बताना, तो उसके हिसाब से जो भी कोई क्वेश्चन लाइव चैट में भेजता है तो उसका आंसर भी साथ साथ करते, ताकि प्रोजेक्ट साथ साथ चले, ज्ञान साथ साथ, अलग अलग कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, अलग अलग नहीं, दिन भर की दिनचर्या में सिंपल सिंपल चीजों को लेके हम चलते जाएं। और जूम मीट और ऐसे ही हम मिलते हैं, ये हमने आपको बताया। नाउ द नेक्स्ट, टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि व्हाट्सएप में 250 से ज्यादा आप मेंबर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। और टेलीग्राम में मैं आपको टेक्निकली भी एक चीज अगर यहाँ पे बताऊं, टेलीग्राम से आपके फोन को कभी भी फोन हार्म नहीं होता है, व्हाट्सएप से फोन भर जाता है और कभी कभी हैंग होने लगता है, ऐसा मुझे जो पता चला है। और टेलीग्राम में आप 1 लाख तक 2 लाख तक आप उनको कर सकते हैं ज्वाइन चैनल बना के। तो टेलीग्राम में ये हमारा ग्रुप चलता है और इजिली हम इसको आगे भी रन करते हैं। और इसमें अगर आपको फील फ्री टू ईमेल अस एट स्पार्क प्रोजेक्ट 2021 की जगह वो 22 हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट सा हुआ है, 2022@gmail.com। और इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर बैठी हूँ, दीदी बैठे हैं, लेकिन दीदी को पता है हमारी जो टीम है पूरी वो बहुत सारा इस पे वर्क करती है और वो टीम आई भी हुई है। दीदी एक बार उनको, जो टीम यहाँ आई है इस प्रोजेक्ट पे वर्क करती है पिछले 2-3 सालों से, वो एक बार खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो सभा में। पूनम पॉल बहन, पूनम जैन बहन, मिनी बहन, हमारी मानसी बहन, मानसी वाधवा बहन, और हमारी शर्मिष्ठा बहन, और हमारे अविनाश भाई जो इस पूरे प्रोजेक्ट को भाई हैं, तो बहनों को आगे रख के हमारे अविनाश भाई एक बार हाथ उठाएं, अविनाश भाई, एकता बहन हमारे पहुंचने वाले हैं, ऐसे अभी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो सारी टीम मिलकर इसको एक बार आप टीम के लिए जरूर ताली बजाएं, हम चाहेंगे, हम भूल जाएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन वो याद रखते हैं कि दीदी आज के दिन ये नेक्स्ट ये चीज होनी है, ये होना है, दीदी से बात करनी है और करना है। और इस सबका इनिशिएट जो लिया है वो हमारे अविनाश भाई ने लिया कि कैसे हम इसको ले लीड बाय करें, किस तरह से इसको पूरा प्रेजेंट करें। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो, वैसे तो मुझे बताया है कि आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको फिल करना होगा, लेकिन फिर भी किसी को अगर कोई वैसे ही पूछना हो कि कैसे हम ज्वाइन करें क्या है, तो आप अविनाश भाई से या आप मेरे से, दीदी बैठे हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसको हम कैसे आगे चलाएं। तो ये था प्रेजेंटेशन जो आपके बीच में रखी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। मुझे कहा गया है आप बहुत देर से बैठे भी हुए हैं, तो हम चाहेंगे एक बार आदि स्वरूप हमने किया तो वही आदि स्वरूप की ही स्मृति में हम अपने एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, देवता ही स्वरूप को इमर्ज करें, खड़े हो जाएं। और देवता कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो दीदी आप सबको दृष्टि भी देंगे और आप देवता रूप में ना अपने आप को रखें कि मैं वो देवता हूं, मेरे ही द्वारा हर एक को क्या मिल रही है, जो आत्मा लेना चाह रही है वो उसको मिल रहा है। तो 2 मिनट के लिए अपने आप को उस कॉन्शियस में लाएं, आदि स्वरूप, मैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन रही हूं, बन रहा हूं, और मेरा देवता स्वरूप, देवताई स्वरूप मेरे को हर कार्य में सफलता दिला रहा है। अब ऐसे ही फेस टू फेस हो जाएं एक दूसरे के, बहुत लाइट, कोई बात नहीं, देवता बहुत धीरे बोलते हुए फेस टू फेस हो जाएं, और वही देवता दूसरे देवता को या देवी को जो बाबा से आपने ली शक्ति, गुण, आनंद, प्रेम, वो देवता स्वरूप में रहकर मैंने उस आत्मा को भी दे दी। अब अपने दोनों हाथ जोड़ें, हाँ, और बहुत प्यार से थोड़ा सिर झुकाते हुए उनको थैंक यू कर दें और बहुत प्यारी सी स्माइल देते हुए थैंक यू कर दें। अब बैठ जाएं और अब हम नुमा शाम का योग करेंगे, यहीं पे बैठेंगे और बाकी आगे की हमारी बहनें हैं वो बताएंगे आगे का प्रोग्राम क्या है।
कर ले।